आप हैं SBS हिंदी के साथ।
आज के मुख्य समाचार। न्यू साउथ वेल्स में कैफे और रेस्टोरेंट्स को 1 जून से मिली कुछ और छूट। फेडरल ट्रेजरी ने जॉब कीपर कार्यक्रम का एस्टीमेट बदला और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफान प्रभावित बंगाल और उड़ीसा के दौरे पर। न्यू साउथ वेल्स के पब्स, कैफे और रेस्टोरेंट्स में 1 जून से एक साथ 50 लोग जा सकेंगे। हालांकि उन्हें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस का पालन करना होगा, जिसमें 4 स्क्वायर मीटर में एक व्यक्ति का रहना प्रमुख है। और जिन वेन्यू में इस नियम के अनुसार जितने ग्राहक आ सकेंगे उन्हीं को इजाजत होगी। 10 लोगों से अधिक की बुकिंग नहीं हो सकेगी। एक बार बैठने के बाद सभी सर्विस टेबल पर ही मिलेंगी। प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजेकलिन कहती हैं कि राज्य सरकार की नीति लोगों के स्वास्थ्य और रोजगार दोनों की सुरक्षा की है।
The treasurer, who obviously has the most cause for ensuring we get those jobs back, losing 221,000 jobs in April was a disaster. We don't want to see that continue. We want to stem the tide, but also we want to do it safely. Now, Minister Dominello, as the Minister for Customer Service, is in charge of regulation across the state. He will be the one that will be ensuring that the industry has very clear guidelines on what they need to do, how strict we are, and how safe we need to be during the course of the pandemic.
दूसरी तरफ, चीन हांगकांग में एक नया सुरक्षा कानून लाना चाहता है, जिससे इस परिक्षेत्र की स्वतंत्रता को बड़ी सीमा तक कम किया जा सके। पिछले साल हांगकांग में कई महीनों तक प्रो डेमोक्रेसी प्रदर्शनकारियों ने एक्सट्रेडिशन लॉ यानी प्रत्यार्पण कानून के विरोध में धरना दिया था। चाइना की नेशनल पीपल्स कांग्रेस में इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक प्रेस वार्ता में चीन का पक्ष रखा।
国家安全是安邦定国的重要基石。
National security is the bedrock underpinning the stability of the country. Safeguarding national security serves the fundamental interests of all Chinese, our Hong Kong compatriots included.
वहीं दूसरी ओर विपक्ष के राजनीतिज्ञ डेनिस केवॉक ने इस प्रस्ताव की निंदा की है।
I just want to say to the international community that this is the end of Hong Kong. This is the end of one country, two system. Make no mistake about it. That Beijing, the Central People's Government, has completely breached its promise to the Hong Kong people. A promise that was enshrined in the Sino-British Joint Declaration and the Basic Law. And they are now completely walking back on their obligation owed to the Hong Kong people.
उप प्रधानमंत्री माइकल मैकॉर्मैक कहते हैं कि सरकार कोयला निर्यात के मुद्दे पर चीन से बातचीत करने के लिए तैयार है। दरअसल खबरों के अनुसार चीन की सरकार ने अपने सरकारी पावर प्लांट्स को ऑस्ट्रेलिया के थर्मल कोल के नए ऑर्डर नहीं देने को कहकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। श्री मैकॉर्मैक कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सोच समझ कर कदम उठाएगा।
We will work through this in a careful, considered way. We understand that China is a big customer of ours, $149.7 billion of exports, and we want to make sure that not only we retain as many of those exports, but indeed we increase them as time goes on. And I've got every confidence that Senator Birmingham as the Trade Minister, Keith Pitt as the Resources Minister will be able to do just that.
वहीं विक्टोरिया के स्कूलों में अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे छात्रों की परीक्षा नवंबर के माह के शुरू में होंगे। उनका रिजल्ट साल के खत्म होने से पहले आ जाएगा। ये वायदा राज्य सरकार ने छात्रों से किया। राज्य में कैंपस में पढ़ाई अगले हफ्ते से शुरू होगी। शिक्षा मंत्री जेम्स मोलिनो कहते हैं कि ईयर 12 के एग्जाम 9 नवंबर को शुरू होकर 2 दिसंबर को खत्म हो जाएंगे। वे बताते हैं कि इसका अर्थ है कि छात्रों को ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी एडमिशन रैंक यानी ATAR साल खत्म होने से पहले मिल जाएगा।
This provides much needed certainty for our Year 12 students who have done it tough this year and their families. It means they can celebrate finalising their Year 12 before the end of the year, enjoy the summer break and then plan for their futures.
वहीं वन नेशन की सेनेटर पॉलिन हैंसन कहती हैं कि क्वींसलैंड की सरकार को सीमाएं बंद रखने का स्वास्थ्य पर असर बताना होगा, वरना उसे कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। सेनेटर हैंसन कहती हैं कि उन्होंने बहुत से वकीलों से सलाह ली जो कहते हैं कि सीमाएं बंद करना असंवैधानिक हो सकता है। उन्होंने चैनल 9 से कहा कि वे इस मामले को प्रीमियर एनास्टेशिया प्लाशे के समक्ष रखेंगी।
The argument here is that she's got to justify that closing board. So the less acute the public health situation is in that state, then it comes harder to justify the closure of the borders.
खबर भारत की। भारत में कोरोना वायरस से जंग के बीच भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ब्याज दर में कटौती की घोषणा की है। इतना ही नहीं, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज यानी शुक्रवार सुबह मीडिया ब्रीफिंग में अनुमान जताते हुए कहा कि 2020-21 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी भारत की नेगेटिव में जा सकती है। उन्होंने कहा कि 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रहने का अनुमान है, मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है और दालों की कीमत में उछाल चिंता का विषय है। कृषि उत्पादन से सबको लाभ मिलेगा। उनके अनुसार WTO वैश्विक व्यापार में 13-32% की कटौती की घोषणा कर सकता है। श्री दास ने आगे कहा कि रेपो रेट को कम किया जा रहा है, जिससे कि आरबीआई अपने आधार रेट को 40 अंक तक घटा सके। अब रेपो रेट 4% होगा। मुद्रा स्फीति का दृष्टिकोण अत्यधिक अनिश्चित है और आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को घटाकर 3.35% कर दिया। यह उम्मीद की जाती है कि राजकोषीय और प्रशासनिक उपायों से 2020-21 की दूसरी छमाही में गति मिलेगी और रेपो रेट में कटौती से उम्मीद है कि अब लोगों को सस्ते लोन मिल सकेंगे। खबर भारत की ही। चक्रवाती तूफान अम्फन से पश्चिमी बंगाल में हुई भारी तबाही का जायजा लेने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच गए। एयरपोर्ट पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको आह्वान किया। पीएम अपने इस दौरे के दौरान अम्फन में हुई तबाही का हवाई जायजा ले रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। सीएम ममता बनर्जी ने अम्फन तूफान से करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई। पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मची है और तूफान के चलते 72 लोगों की मृत्यु हो गई। 2 जिले लगभग पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। तूफान से हजारों लोग बेघर भी हुए हैं। कई पुल नष्ट हो गए और कई अभी जलमग्न हैं। कोलकाता और राज्य के कई अन्य हिस्सों में तबाही के निशान स्पष्ट देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का इसके साथ ही ओडिशा जाने का भी कार्यक्रम है। लगभग 3 महीने के अंतराल में प्रधानमंत्री का ये देश की राजधानी दिल्ली से बाहर पहला दौरा है। कोरोना वायरस की महामारी और देश में जारी लॉकडाउन के चलते प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में ही रहे। प्रस्तुत है करेंसी समाचार। ये समाचार मिलने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मूल्य चल रहा था 65.42 अमेरिकी सेंट्स और 49.53 भारतीय रुपये। खेल के खबरों में भारत के क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली और भारत के पूर्व कप्तान को अब आईसीसी का अध्यक्ष बनाने की मांग उठ खड़ी हुई है। ये मांग ग्रीम स्मिथ ने पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अगर क्रिकेट को कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन और उसकी वजह से परेशानी में फंसे बोर्ड्स को बचाना है तो सौरव गांगुली को आईसीसी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सौरव गांगुली ने अभी इस बारे में अपना मत प्रकट नहीं किया है। उनका कहना है कि वो बीसीसीआई के नियमों के अनुसार ही कोई कदम उठाएंगे। पेश है मौसम की जानकारी। मौसम विभाग के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में धूप, अधिकतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में भी बारिश होगी, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। होबर्ट में कुछ एक बूंदाबांदी, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। कैनबरा में कुछ एक बौछारे, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 5 डिग्री। सिडनी में बारिश की संभावना, अधिकतम तापमान रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री। ब्रिस्बेन में भी आंशिक बादल, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। डार्विन में आंशिक बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।